यर्मिया बाब 26। जब यहोयकीम बिन योसियाह यहूदा के तख्त पर बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद रब का कलाम यर्मिया पर नाजिल हुआ। रब ने फरमाया, ऐ यर्मिया, रब के घर के सहन में खड़ा होकर उन तमाम लोगों से मुखातब हो जो रब के घर में सजदा करने के लिए यहूदा के दिगर शहरों से आए हैं। उन्हें मेरा पूरा पैगाम सुना दे, एक बात भी न छोड़ो। शायद वो न सुने और हर एक अपनी बुरी राह से बाज आ जाए। इस सूरत में मैं पछता कर उन पर वो सजा नाजिल नहीं करूंगा जिसका मंसूबा मैंने उनके बुरे आमाल देखकर बांध लिया है। उन्हें बता, रब फरमाता है कि मेरी सुनो और मेरी उस शरीयत पर अमल करो जो मैंने तुम्हें दी है। नेज नबियों के पैगामात पर ध्यान दो। अफसोस, गो मैं अपने खादिमों को बार बार तुम्हारे पास भेजता रहा तो भी तुमने उनकी न सुनी। अगर तुम आइंदा भी न सुनो तो मैं इस घर को यूं तबाह करूंगा जिस तरह मैंने सैला का मकदिस तबाह किया था। मैं इस शहर को भी यूं खाक में मिला दूंगा कि इबरत अंगेज मिसाल बन जाएगा। दुनिया की तमाम कौमों में जब कोई अपने दुश्मन पर लानत भेजना चाहे तो वो कहेगा कि उसका यरूशलम का सा अंजाम हो। जब यर्मिया ने रब के घर में रब के ये अल्फाज सुनाए तो इमामों, नबियों और तमाम बाकी लोगों ने गौर से सुना। यर्मिया ने उन्हें सब कुछ पेश किया जो रब ने उसे सुनाने को कहा था। लेकिन जो ही वो इख्तिताम पर पहुंच गया तो इमाम, नबी और बाकी तमाम लोग उसे पकड़कर चीखने लगे, तुझे मरना ही है, तू रब का नाम लेकर क्यों कह रहा है कि रब का घर सैला की तरह तबाह हो जाएगा और यरूशलम मलबे का ढेर बनकर गैर आबाद हो जाएगा। ऐसी बातें कहकर तमाम लोगों ने रब के घर में यर्मिया को घेरे रखा। जब यहूदा के बुजुर्गों को इसकी खबर मिली तो वो शाही महल से निकलकर रब के घर के पास पहुंचे। वहां वो रब के घर के सहन के नए दरवाजे में बैठ गए ताकि यर्मिया की अदालत करें। तब इमामों और नबियों ने बुजुर्गों और तमाम लोगों के सामने यर्मिया पर इल्जाम लगाया, लाजिम है कि इस आदमी को सजाए मौत दी जाए क्योंकि इसने इस शहर यरूशलम के खिलाफ नबूवत की है, आपने अपने कानों से ये बात सुनी है। तब यर्मिया ने बुजुर्गों और बाकी तमाम लोगों से कहा, रब ने खुद मुझे यहाँ भेजा ताकि मैं रब के घर और यरूशलम के खिलाफ उनकी तमाम बातों की पेशगोई करूं जो आपने सुनी है। चिनांचे अपनी राहों और आमाल को दुरुस्त करें, रब अपने खुदा की सुने ताकि वो पछताकर आप पर वो सजा नाजिल न करे जिसका ऐलान उसने किया है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो आपके हाथ में हूं, मेरे साथ वो सलूक करें जो आपको अच्छा और मुनासिब लगे। लेकिन एक बात जान लें, अगर आप मुझे सजाए मौत दें तो आप बेकसूर के कातिल ठहरेंगे, आप और ये शहर उसके तमाम बाशिंदों समेत कसूरवार ठहरेंगे, क्योंकि रब ही ने मुझे आपके पास भेजा ताकि आपके सामने ही ये बातें मैं करूं। ये सुनकर बुजुर्गों और अवाम के तमाम लोगों ने इमामों और नबियों से कहा, ये आदमी सजाए मौत के लायक नहीं है क्योंकि उसने हमारे खुदा का नाम लेकर हम सबसे बात की है। फिर मुल्क के कुछ बुजुर्ग खड़े होकर पूरी जमात से मुखातब हुए। जब हिजकिया यहूदा का बादशाह था तो मोरिश्त के रहने वाले नबी मीका ने नबूवत करके यहूदा के तमाम बाशिंदों से कहा, रब्बुल अफवाज फरमाता है कि सियोन पर खेत की तरह हल चलाया जाएगा और यरूशलम मलबे का ढेर बन जाएगा, रब के घर की पहाड़ी पर गुंजान जंगल उगेगा। क्या यहूदा के बादशाह हिजकिया یا یہودا کی کسی اور شخص نے میکا کو سزائے موت دی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہزقیاہ نے رب کا خوف مان کر اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، نتیجے میں رب نے پچھتا کر وہ سزا ان پر نازل نہ کی جس کا وہ اعلان کر چکا تھا۔ سنیں، اگر ہم یرمیاہ کو سزا موت دیں تو اپنے آپ پر سخت سزا لائیں گے۔ ان دنوں میں ایک اور نبی بھی یرمیاہ کی طرح رب کا نام لے کر نبوت کرتا تھا، اس کا نام اوریاہ بن سمایاہ تھا اور وہ قریتیریم کا رہنے والا تھا۔ اس نے بھی یروشلم اور یہودا کے خلاف وہی پیشگوئیاں سنائی جو یرمیاہ سناتا تھا۔ جب یہویقیم بادشاہ اور اس کے تمام فوجی اور سرکاری افسروں نے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے مار ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اوریاہ کو اس کی خبر ملی اور وہ دوڑ کر بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ مصر پہنچ گیا۔ تب یہویقیم نے الناتن بن اکبور اور چند ایک آدمیوں کو وہاں بھیج دیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اوریاہ کو پکڑ کر یہویقیم کے پاس واپس لائے۔ بادشاہ کے حکم پر اس کا سر قلم کر دیا گیا اور اس کی لاش کو نچلے طبقے کے لوگوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ لیکن یرمیاہ کی جان چھوٹ گئی، اسے عوام کے حوالے نہ کیا گیا، گو وہ اسے مار ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ اخیقام بن صافن اس کے حق میں تھا۔